स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 14 अगस्त और दिन रविवार। रियो ओलंपिक में भारत को एक और झटका, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी सेमीफाइनल में पराजित। 100 मीटर की रेस से द्युति चंद भी बाहर।
अच्छा नहीं भाग पाई मैंने, इतना रात को हो रहा है ना, नर्वस भी ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा अंदर से डर गया मैंने।
भारत दौरे पे आए चीनी विदेश मंत्री ने की मोदी से मुलाकात। बच्चों के लिए यौन शिक्षा पर एक खास रिपोर्ट।
बच्चे ये पूछते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं? कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं हम तुमको हॉस्पिटल से ले आए। कभी कभी बच्चे को लगता है कि हमको अडॉप्ट किया और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। रियो ओलंपिक में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स टेनिस मुकाबले में अपना सेमीफाइनल मैच हार गई है। उसे वीनस विलियम्स और राजीव राम की अमरीकी जोड़ी ने 2-6, 6-2, 10-3 से हरा दिया। मिर्जा और बोपन्ना को अब कांस्य पदक के लिए अपना मैच खेलना होगा। विश्व डोपिंग निरोधक संस्था यानी वाडा ने कहा है कि रूसी एथलीट यूलिया स्टेपानोवा का अकाउंट हैक कर लिया गया है। यूलिया ही वो एथलीट हैं जो रूस के सरकार समर्थित डोपिंग स्कैंडल को सामने लाई थीं और इस कांड की विसिल ब्लोअर हैं। इसी के बाद रियो ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं से रूसी एथलीटों को बैन कर दिया गया। स्टेपानोवा इस मामले को सामने लाने के बाद फिलहाल किसी अज्ञात जगह पर छिपी हुई हैं। वाडा के अधिकारियों के मुताबिक उसे पता चला है कि स्टेपानोवा के अलावा किसी और ने उनके अकाउंट को खोला है। वाडा इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने अपने 90वें जन्मदिन पर समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। वो हवाना के एक थिएटर में हुए सम्मान समारोह में समर्थकों के बीच नजर आए। इस साल अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब कास्त्रो सार्वजनिक तौर पर दिखे। कास्त्रो ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में एक खत लिखा जिसमें उन्होंने रूस और चीन की तो जमकर तारीफ की, लेकिन अमरीका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों की आलोचना की। कास्त्रो का संदेश क्यूबा के राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर पढ़कर सुनाया गया।
Deseo expresar mi más profunda gratitud por las muestras de respeto.
मेरे प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने बीते दिनों में जो प्यार, उपहार और शुभकामनाएं मुझे दी हैं, उससे मैं अभिभूत हूं। देश और पार्टी की बेहतरी के लिए आप लोगों ने मुझे जो सुझाव भेजे हैं, उन्हें मैं संबंधित लोगों तक पहुँचाऊंगा। ये था फिदेल कास्त्रो के खत का एक हिस्सा। फिदेल ने 50 से भी ज़्यादा साल तक क्यूबा की सत्ता संभाली। बाद में अपनी ख़राब सेहत की वजह से उन्होंने साल 2008 में सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक इमाम सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इमाम मौलामा अकोंजी और एक दूसरे शख्स को हमलावर ने पीछे से सर में गोली मार दी। 55 साल के इमाम मौलामा 2 साल पहले ही बांग्लादेश से अमेरिका आकर बस गए थे। पुलिस ने बताया कि अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि मरने वालों के मजहब की वजह से उन पर यह हमला किया गया। एक शख्स को हाथ में बंदूक लिए घटनास्थल से भागते देखा गया। हालांकि इस सिलसिले में अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अमेरिका के लुइजियाना और मिसिसिपी राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। अब तक 1,000 लोगों को बाढ़ से बचाया जा चुका है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अगस्त की 14 तारीख और दिन रविवार। इस वक्त हो चुके हैं 6:33 और 44 सेकंड। कार्यक्रम की शुरुआत रियो ओलंपिक से। रियो ओलंपिक में भारत को कल एक और झटका उस वक्त लगा जब सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी टेनिस के मिक्स्ड डबल मुकाबले के सेमीफाइनल में हार गई। अगर इनकी जोड़ी जीत जाती तो कम अज कम एक रजत पदक भारत को मिलना तय हो जाता। अब कांस्य पदक के लिए इस जोड़ी को खेलना बाकी है। रियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम बता रहे हैं कि ओलंपिक में और कल क्या कुछ खास हुआ।
एक हफ्ते की मायूसी के बाद सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने भारतीय खेमे में उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज भारतीय जोड़ी अमेरिका की वीनस विलियम और राजीव राम से मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में हार गई। लेकिन फिर भी पदक की उम्मीद अभी बरकरार है। आज भारतीय जोड़ी अगर जीत जाती तो कम से कम एक सिल्वर मेडल तो पक्का हो जाता। अब सानिया और बोपन्ना को कांस्य पदक के लिए मैच खेलना होगा। वीनस विलियम और राजीव राम ने ये मैच 2-6, 6-2, 10-3 से जीता। इससे पहले 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में ललिता बब्बर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ललिता ने 9 मिनट 19.76 सेकंड का समय निकालकर अपनी प्रारंभिक हीट में चौथा स्थान प्राप्त किया। ललिता पीटी उषा के 32 साल बाद ओलंपिक ट्रैक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। कल देर रात विवादों से घिरी दुति चंद 100 मीटर के पहले राउंड में हार गईं, लेकिन रेस के बाद देश के और विदेशी पत्रकारों ने दुति चंद को घेर लिया। दुति चंद ने माना कि जेंडर विवाद से उनके प्रदर्शन पर फर्क तो पड़ा, लेकिन अब वो आने वाले मुकाबलों के लिए तैयार हैं।
अच्छा नहीं भाग पाई मैंने, इतना रात को हो रहा है ना, नर्वस भी ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा अंदर से डर गया मैंने। खुश तो लग रहे क्योंकि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी फिर मैं क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करके आज ओलंपिक में भागा, बहुत खुश लग रही। मैं जो स्ट्रगल किया था इसका फल मिला। नहीं टाइमिंग तो अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा बेस्ट 11-2 है। मैं सोचा था कि अच्छा करूँगी लेकिन हुआ नहीं। धीरे धीरे तो परफॉर्मेंस बढ़ा क्योंकि बीच में प्रॉब्लम हुआ तो ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रही थी। अभी तो ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। अभी भी टाइम है मेरे का और 2-3 ओलंपिक खेल सके मैंने, क्योंकि 2020 का भी मैं खेल सकूं।
आज महिला हॉकी में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने भारत को 5-0 से हराया। महिलाओं के बैडमिंटन मुकाबले में भी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा थाईलैंड की जोड़ी के सामने टिक न सकी और आसानी से 2-0 से हार गईं। नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक, BBC ब्राजील।
ये तो बात हुई कि कल क्या हुआ, लेकिन आज क्या होना है खास। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्मकार पर तो सबकी निगाहें होंगी ही जब वो फाइनल के लिए उतरेंगी, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ आज होना है, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
रियो में जारी 31वें ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज मैराथन, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक और निशानेबाजी में अपना दमखम दिखाएंगे। भारत के लिए रियो ओलंपिक में अब तक की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरी महिला जिम्नास्टर दीपा कर्माकर आज फाइनल मुकाबले में उतरेंगी। उन्हें वॉल्ट, अनेवन बार्स, बैलेंस बीम और फ्लोर की स्पर्धाओं में अपनी ताकत दिखानी होगी। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पदक के लिए उनका सामना अमरीका की सिमोने बिलिस, उत्तरी कोरिया की होंग यून जोंग, स्विट्जरलैंड की जूलिया स्टीनगर्बर और रूस की मारिया पासिका से होगा। इनके अलावा उज्बेकिस्तान, कनाडा और चीन की जिम्नास्टर भी कम नहीं हैं। गोल्फ में भारत के SSP चौरसिया और अनिर्बान लाहिड़ी अपने शॉट्स लगाएंगे। बैडमिंटन में भारत की स्टार महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल ग्रुप मैच में यूक्रेन की मारिजा उलितीना और PV सिंधु कनाडा की मिशेल ली का सामना करेंगी। मुक्केबाजी में भारत के मनोज कुमार लाइट वेल्टरवेट में प्री क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के गेबना जोरा का सामना करेंगे। हॉकी में पुरुष वर्ग में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का सामना करेगी। इससे पहले अपने ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम कनाडा के खिलाफ 2-2 से बराबरी का मुकाबला खेली। भारत के लिहाज से ये प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। हालांकि बाद में टीम के कप्तान गोलकीपर श्रीजेश ने माना कि टीम का पहला लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचना था, शायद इसलिए टीम अधिक दम नहीं लगाना चाहती थी। भारत ने 2 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ सहित 7 अंकों के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने अभी तक 9 गोल किए हैं और इतने ही खाए हैं। दूसरी तरफ बेल्जियम ने अपने ग्रुप में 4 जीत और 1 हार सहित 12 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बेल्जियम ने अभी तक 21 गोल किए हैं और केवल 5 खाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लिए क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से पार पाना आसान नहीं होगा। निशानेबाजी में आज भारत के गगन नारंग और चैन सिंह 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपना निशाना साधेंगे। एथलेटिक्स में भारत की OP जयशाह और कविता राउत मैराथन में हिस्सा लेंगी।
और अब खेल से हटकर कुछ खबरें राजनीति से जुड़ी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हुए हैं। शनिवार यानी कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता पर भी बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने ICWA के फेलो राहुल मिश्रा से इस बारे में जानकारी मांगी।
देखिए, आधिकारिक स्तर पे जो वांगी की सुषमा स्वराज जी से मुलाकात हुई है, उसमें दो मुद्दे सबसे बड़े हैं। पहले तो G20 की जो बैठक हुई है, होनी है अगले महीने हांगझाऊ में, उसमें क्या संयुक्त मसौदा है उसके बारे में, उसके संदर्भ में बात करने के लिए। और दूसरा, ब्रिक्स की जो गोवा में बैठक होने वाली है अक्टूबर में, उसका संयुक्त मसौदा क्या हो उसके संदर्भ में बात करने। लेकिन इसके साथ ही साथ चीन ये भी चाहता है कि जो G20 की मीटिंग है अगले महीने, उसमें दक्षिण चीन सागर पे कोई भी बात ना हो। ये सूत्रों के अनुसार मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जब आसियान की बैठक हुई उसमें भी चीन ने यही काम किया। तो मुझे लगता है वो इस तरह की एक स्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं, ये सबसे पहला है। उसके अलावा मुझे लगता है कि चीन और बहुत सारी और बातें हैं जिन पे चीन और भारत दोनों पक्षों की बात हुई होगी, और सूत्रों का भी यही कहना है कि दक्षिण चीन सागर पे जो भारत का अभी तक का रवैया रहा है, रुख है, जो भारत की भूमिका और संबंधित बयान, दोनों पे चीन की आशंकाएं हैं। और भारत की तरफ से अगर देखें तो भारत जो है, जो CPEC चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, उसमें जो $46 बिलियन देने की चीन ने घोषणा की है, उस पर चिंताएं जाहिर की हैं। तो भारत का कहना है कि चीन अगर खुद ये कहता रहा है कि दोनों पक्षों, जब दो राष्ट्रों के बीच में कोई विवादित क्षेत्र हो तो उसमें किसी तीसरे देश को आर्थिक कार्यक्रम या आर्थिक कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं लगाना चाहिए। और इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो गिलगित बाल्टिस्तान और UK से होते हुए जा रहा है ये गलियारा, इसमें चीन को कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो एक ही मुद्दा मुझे लगता है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में डिस्कस हुआ होगा।
ऐसी खबरें हैं कि NSG में भारत के प्रवेश पर चीन ने कुछ नरमी दिखाई है, ऐसे संकेत मिले हैं।
जी, मुझे लगता है ये संकेत बहुत ही क्रेडिबल है। वो इसलिए क्योंकि चीन आज दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पे बहुत अलग थलग पड़ गया है, और उसको ये लग रहा है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से और एशिया में एक प्रमुख, एशिया के शक्तिशाली देशों में से एक होने की वजह से, अगर दक्षिण चीन सागर पे चीन की जो नीति है उसके विरोध में बोलता है, या जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का PCA का जो निर्णय आया है उसके पक्ष में बोलता है, तो इससे चीन की छवि और धूमिल होगी। तो इस मुद्दे को लेकर के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बार्गेनिंग की सिचुएशन आ रही है, कि NSG के मुद्दे पे चीन भारत को सपोर्ट करे और भारत अपने रुख में थोड़ी नरमी लाए दक्षिण चीन सागर में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसमें।
ये थे ICWA फेलो राहुल मिश्रा।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:43 और 8 सेकंड, और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। आजकल हम आपको कश्मीर के कर्फ्यू पर विशेष सीरीज सुना रहे हैं। पिछले 35 दिनों से भारत प्रशासित कश्मीर में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू लगने से पहले जहां स्कूल जाते बच्चों की किलकारी गूंजा करती थी, वहीं अब खामोशी है, और बीच बीच में ये खामोशी टूटती है तो पुलिस के सायरन, चेतावनी और लोगों के हंगामे के शोर शराबे के बीच। घाटी के हाल पर चौथी कड़ी सुनिए लेखक निदा आवास नवाज की आवाज़ में।
इंसान हमेशा बुरे दिनों को अच्छे दिनों की यादों के सहारे जीता है। मैं भी आज सवेरे जब दिल दिमाग में जहर घोलते कश्मीर घाटी के वर्तमान पर सोच रहा था, तो अच्छे दिनों को भी याद करने लगा था। डर और अनिश्चितता की लपेट में आई मेरी कश्मीर घाटी की इन सड़कों पर सवेरे सवेरे कितनी रौनक होती थी। नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों में आकाश को छू लेने के बड़े बड़े सपने लिए स्कूलों की ओर निकलते थे। उनके टिफिन में उनकी माएँ खाने के लंच के साथ साथ भविष्य के लिए ढेर सारी उम्मीदें और एक उज्जवल जीवन आरंभ करने का सलीका भी परोसती थी। सुबह 8 बजे और 9 बजे के बीच मेरे शहर के मरकजी चौक पर अपनी अपनी स्कूली गाड़ियों की प्रतीक्षा में यह बच्चे ऐसा दृश्य पैदा करते थे जैसे विभिन्न रंगों की तितलियों का पर्व लगा होता था। फिर अचानक जैसे किसी जिद्दी शरीर बड़े ने बच्चों की इस सुंदर पेंटिंग पर स्याही उंडेल दी हो। स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, यूनिवर्सिटियां और अन्य सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हुए और हड़तालों और कर्फ्यू ने वो कोहराम मचा दिया कि ये बच्चे हमारे उज्जवल भविष्य की ये बुनियादी उम्मीदें घरों में दुबकने पर मजबूर हुए, गली कूचों में बिखरने पर मजबूर हुए। मुझे परसों शहर की अंदरूनी गलियों में टहलने का अवसर प्राप्त हुआ। आजकल कर्फ्यू में जिस तरह चौराहों और सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और डरावनी रेजर वायर ने कब्जा जमा दिया होता है, उसी तरह शहर की अंदरूनी आबड़ खाबड़ गलियों पर मोहल्ले के जवानों और छोटे छोटे बच्चों का कब्जा रहता है। मैंने शहर भर की अंदरूनी तंग और तारीख गलियों में छोटे छोटे बच्चों की टोलियां देखी। कुछ बच्चों ने सड़कों के बीच पत्थर रखकर जैसे चेक पोस्ट बना दिए हों। वो हर आने जाने वाले को रुकाते हैं और पूछताछ करते हैं। मुझे भी एक ऐसे ही चेक पोस्ट पर रुकाया गया। एक छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा होकर अपनी तोतली जुबान में पूछने लगा, हे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि हड़ताल की काल दी गई है? मैं उत्तर देने ही वाला था कि एक बड़े से पत्थर पर बैठा लगभग 7-8 वर्ष का एक और बच्चा मुझसे कहने लगा, हे हम जाने नहीं देंगे। तुम नहीं देख रहे हो, हमने सड़क बंद की है। अभी एक मारवती वाला आया था, उसको हमने सबक सिखाया है। ये देखो, ये शीशों की किरचियाँ उसी की गाड़ी की हैं। दूर दुकान के एक छज्जे पर बैठे चंद बड़े उनका साहस बढ़ा रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जिन नन्हे मुन्ने बच्चों को इस वक्त स्कूलों की कक्षाओं में होना चाहिए था, जिन हमारे युवाओं को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, कारखानों और दफ्तरों में होना चाहिए था, उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है? उनके सुनहरे सपने हड़तालों, पत्थरबाजियों, कर्फ्यू, पलटगनों और इस शहर पर बिछी रेजर वायर में रक्त रंजित क्यों हो रहे हैं?
ये थे भारत प्रशासित कश्मीर के एक लेखक निदा नवाज।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और मेरे सहयोगी प्रभात तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बताएं प्रभात, क्या कहते हैं आपके अखबार?
जी इकबाल जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा द टाइम्स ऑफ इंडिया से। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है उस पर प्रवीण तोगड़िया की आपत्ति को सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 80% गौरक्षकों को गुंडा और असामाजिक कहा, ये न सिर्फ गाय का बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। प्रवीण तोगड़िया ये भी कहते हैं कि लोग आतंकवादियों और बलात्कार जैसे अपराध करने वालों के लिए डोजियर बनाने की बात कहते हैं और प्रधानमंत्री गौरक्षकों पर डोजियर बना रहे हैं। हालांकि बाद में वे दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके बचपन के दोस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो उनकी बात सुनेंगे। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ग्लोबल सर्वे को भी सुर्खी बनाया गया है जिसके मुताबिक भारतीयों की औसत ऊंचाई बीते कुछ सालों में बढ़ी है लेकिन अभी भी विश्व के औसत से भारतीय काफ़ी पीछे हैं।
सबसे
द नीदरलैंड्स के जो नागरिक हैं उनकी औसत ऊंचाई 182.5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 6 फिट है औसत ऊंचाई। भारत में आपने देखा ही होगा 6 फिट के लोग तो बहुत ही कम दिखते हैं।
आप हैं?
जी नहीं, मैं, मेरी हाइट तो 5'9" है।
मैं भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो भारत,
भारतीयों की औसत ऊंचाई 164.9 सेंटीमीटर है, जो कि बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन
5 से भी कम।
जी 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 जी, विश्व औसत से बहुत ही कम है, भारतीय काफ़ी कम ऊंचाई के होते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बात की संभावना है कि बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ही खबर छपी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाना यहाँ के नागरिकों की बेइज्जती करने जैसा है। द हिंदू अखबार में एक बड़ी दिलचस्प खबर ये छपी है कि मौसम और बारिश की संभावना का पता लगाने वाले भारतीय मौसम विभाग के जो यंत्र हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और तकरीबन 25% मापक जो है वो गलत हैं, जिसकी वजह से बारिश और मौसम का अनुमान गलत होने की आशंका हो सकती है। इसी वजह से भारतीय मौसम विभाग जो है वो मौसम का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाता, ऐसा अखबार का दावा है। द हिंदू ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को भी सुर्खी बनाया है जिसमें अदालत ने कहा है कि कश्मीर में पुलिस ठीक तरह से प्रशिक्षित नहीं है, इस वजह से वहां होने वाली हिंसा को रोकने में नाकाम रही। अखबार कहता है कि कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि खराब तरीके से प्रशिक्षित पुलिस जो है वो जनता के गुस्से को ठीक तरह से काबू पाने में विफल रही है, जिस वजह से गड़बड़ियाँ फैलती हैं। जी इकबाल जी,
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की इस समीक्षा के लिए।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब एक खास रिपोर्ट। भारत में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के नाम पर सिर्फ 9वीं क्लास में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वाला अध्याय है, और अध्यापक अक्सर वो अध्याय भी बच्चों को होमवर्क के तौर पर दे देते हैं। तो ऐसे में कौन और कैसे बच्चों के उन सवालों का जवाब दिया जाए जो सेक्स संबंधी हैं, बच्चों के लिए यौन शिक्षा पर सुनिए मुंबई से हमारी सहयोगी खुशबू दुआ की ये खास रिपोर्ट।
सेक्स एक ऐसा विषय जिसके बारे में बात करने में अक्सर लोग कतराते या शर्माते हैं। हम और भी ज्यादा हिचकिचाते हैं जब बच्चे हमसे सेक्स के बारे में सवाल करें। किसी जमाने में सेक्स जैसे विषय से दूर भागने वाले भारतीय समाज में अब सेक्स एजुकेशन को अहमियत दी जा रही है, और इसका एक प्रयास है यशराज फिल्म्स की ओर से बनाई गई एक इंटरनेट सीरीज पप्पू और पापा।
पापा, ये बच्चे कैसे पैदा होते?
सेक्स चैट विद पप्पू एंड पापा नाम की इस वेब सीरीज में एक 7 साल का बच्चा अपने पापा से सेक्स के बारे में सवाल करता है, और उसके पापा बड़ी समझदारी से उसे सही सही समझाते हैं। इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक आशीष पाटिल कहते हैं,
कुछ साल पहले की बात है, मेरा बेटा जो है वो कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, और दोस्त आए हुए थे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, और ये बच्चे जो जैसे ही खेलते हैं, गाने वाने गाते हैं, नर्सरी राइम्स गाते हैं, तो उनका एक गाना गा रहे थे, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज़, एक बहुत ही पॉपुलर नर्सरी राइम है। तो वो गाना शुरू हो गया, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, और गाना बनता गया और आगे गाना कंप्लीट हुआ, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज पीनस और वजाइना। लोग सब चौंक गए, अरे ये क्या हो गया भाई, ये कहां से धमाका फूट गया यहाँ पे। मैंने सोचा कि यार इसमें इतने चौंकने जैसी क्या बात है, कोई अजीब बात तो है नहीं, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, क्यों हमें इतना ऑकवर्ड लगता है, जैसे ही और कोई बॉडी के पार्ट है वैसे ही है, तो ये कहीं और गलत जगह पर जाके पूछे या सीखे, उससे बेहतर तो यही होगा कि खुद के माँ बाप से सीखें ये बात, जो क्या सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये हमारी रिसर्च हमें बताती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में बात करें, उसका डायरेक्ट रिलेशन और इम्पैक्ट आता है सेफर सेक्सुअल बिहेवियर।
लेकिन इंटरनेट पर फिल्म बनाना अलग बात है, और बच्चों के सवालों का सामना करना एक अलग बात। बच्चों के इस तरह के सवालों से सबसे ज्यादा मुश्किल में आते हैं माँ बाप या उनके शिक्षक। ऐसे सवालों से होने वाली दुविधा के बारे में हमें बताया चिन्मय दवे ने। चिन्मय 9 साल के बच्चे की माँ होने के साथ साथ एक स्कूल टीचर भी हैं।
मुझे एक सवाल किया था कि बच्चे कहाँ से आते हैं, तब मैंने उसको बोला था स्टेट में से आते हैं क्योंकि उसने कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखा था, तब मैंने तब उसने पूछा था कैसे वो पेट में से कैसे आएगा, तब मैंने बताया था कि पेट काट के डॉक्टर निकालते हैं बच्ची को, और उसी तरह से मैंने उसको समझाया था, और मेरा भी सिजेरियन सेक्शन था इसलिए फिर वो इतना दिक्कत नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसे समझाने में।
तो क्या करना चाहिए जब आपका बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं या फिर सेक्स क्या होता है? क्या आप भी ज्यादातर लोगों की तरह अपने बच्चे से कहते हैं कि बच्चे भगवान के यहाँ से आते हैं? सवाल मुश्किल है, लेकिन ऐसे सवालों का जवाब देना भी बेहद जरूरी है। ऐसे सवालों से जूझ रहे अभिभावकों से मनोचिकित्सक डॉक्टर दयाल मीर चंदानी कहते हैं,
बच्चे ये पूछते हैं बच्चे कहाँ से आते हैं, कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं हम तुमको हॉस्पिटल से ले आए, कभी कभी बच्चे को लगता है कि हमको अडॉप्ट किया और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमको अगर हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल में छोड़ भी सकते हैं वापस, नहीं कोई कहते हैं भगवान ने दिया आपको, तो ये सब ऐसे चीजें होते हैं। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव पेरेंट्स देते रहे बच्चे को कभी ये नहीं फील होगा कि कोई प्रॉब्लम है या तो कुछ हो रहा है मैं उनसे छिपा सकता हूँ, और रिबेलियन भी नहीं करते, नहीं तो क्या है छिपे छिपे कुछ भी कर लेते हैं।
डॉक्टर मीर चंदानी बच्चों द्वारा सेक्स से जुड़े किसी भी सवाल का सामना करने के लिए अभिभावकों को तैयार रहने के लिए कहते हैं,
पहले तो अपने आप को एडुकेट करें, तो उसके लिए कोर्सेज भी होते हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके सेक्स एडुकेटर भी होते हैं, सेक्स काउंसलर्स भी होते हैं, लोगों ने उसके बारे में बुक्स भी लिखे हैं, तो हर एज के लिए वो एडवाइस कर सकते हैं। अगर उनको फोन भी करें तो वो बताएंगे आपके बच्चे के लिए ये बुक्स इतने इस एज पे ये बुक्स ये चीजें हैं, कलरिंग बुक्स या कॉमिक बुक्स, आपको खुद एजुकेट करना है पेरेंट्स को उसके लिए, या तो सेक्स एजुकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, माने वो सीख सकते हैं कि क्या सिखाना कैसे बात करना है।
जिस तरह भाषा गणित और विज्ञान के विषयों की जानकारी जरूरी है, उसी तरह सेक्स एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके नहीं होने के अभाव में बचपन से ही लोगों के मन में कई तरह के वहम, डर और भ्रांतियां बैठ जाती हैं, जिनसे कई बीमारियां, अपराध और चोट लगने का खतरा रहता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूरत है सेक्स पर खुलकर बात करने की, और अगर ऐसा होता है तो समाज का एक नया चेहरा हमारे सामने होगा। खुशबू दुआ, बीबीसी मुंबई।
रियो ओलंपिक से भारत के लिए तो कोई बहुत अच्छी खबरें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों ने अच्छी खबर जरूर दी है। भारत ने वेस्टइंडीज को सेंट लुसिया टेस्ट में 237 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज के तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन कल 346 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम महज 108 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने 3 जबकि ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की ओर से डेरेन ब्रावो ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। इससे पहले भारत ने कल के अपने स्कोर 3 विकेट पर 157 रन से आगे खेलना शुरू किया और 7 विकेट पर 217 के स्कोर पर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने 78 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में अश्विन और विकेटकीपर दीमान साहा के शानदार शतकों की मदद से 335 रन बनाए थे। अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वेस्टइंडीज की पहली पारी 225 रन बनाकर आउट हो गई थी। सीरीज का पहला टेस्ट भारत ने पारी और 92 रनों से जीता था, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। सीरीज का आखिरी टेस्ट 18 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। तो चलते चलते अब एक बार सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। रियो ओलंपिक में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स टेनिस मुकाबले में अपना सेमीफाइनल मैच हार गई है। उसे वीनस विलियम्स और राजीव राम की जोड़ी ने हराया। मिर्जा और बोपन्ना को अब कांस्य पदक के लिए अपना मुकाबला खेलना होगा। विश्व डोपिंग निरोधक संस्था यानी वाडा ने कहा है कि रूसी एथलीट यूलिया स्टेपनोवा का अकाउंट हैक कर लिया गया है। यूलिया ही वो एथलीट हैं जो रूस के सरकार समर्थित डोपिंग स्कैंडल को सामने लाई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक इमाम सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इमाम मौलामा अकोंजी और एक दूसरे शख्स को हमलावर ने पीछे से सर में गोली मार दी। अमेरिका के लुइजियाना और मिसिसिपी राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। अब तक 1,000 लोगों को बाढ़ से बचाया जा चुका है। लुइजियाना के गवर्नर के मुताबिक राज्य में 38 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। भारत ने वेस्टइंडीज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज जीत ली है। सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान वेस्टइंडीज को 237 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त पा ली है। फ्रांस में एक कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के खास तरीके से स्विम सूट पहनने पर लगी रोक को सही ठहराया है। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक 1 घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।